I'm Annie Apple, and I'm here to invite you to come and listen to my new podcast series, Raising a Pro. It's the most intimate sports-related conversations you will hear. Each week, we explore the journeys of some of your favorite NFL players through the eyes of those that know them best. From Joe Burrow, DeAndre Hopkins, Myles Garrett, Ezekiel Elliott, Nick and Joey Bosa, just to name a few. With exclusive insights and information, we leave no stone unturned. Subscribe now to Raising a Pro on your favorite podcast app.
HD Smartcast. You are listening to an HD Smartcast original.
आइए मैं राणा सफी आपको ले चलती हूँ इतिहास की अनदेखी गलियों में मेरे पॉडकास्ट अनजाने रास्ते के जरिए. अजमेर का नाम सुनते ही ख्वाजा गरीब नवाज और उनकी दरगाह की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है. श्रद्धा और एहतराम से आंखें झुक जाती हैं और दिल में वहां जाने की हसरत जाग जाती है. तो चलिए आज मैं आपको वहां लेके चलती हूँ. आज उनकी दरगाह अपने सफेद गुंबद और सुनहरे ताज के साथ लाखों अकीदतमंदों की मेहमान नवाजी करती है. उनकी बरकत से भीग जाते हैं हम लोग. ये अपनी इंसानियत, मोहब्बत और खिदमत के जज्बे के लिए मशहूर हैं. उनका अकीदा था कि इंसान को दरिया के जैसे सकाफती होना चाहिए, सूरज की तरह प्यार करना चाहिए और धरती की तरह मेहमान नवाजी करनी चाहिए. और शायद इसी जज्बे की वजह से उनको गरीब नवाज का खिताब मिला और आज भी लोग उनको ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से ज़्यादा जानते हैं. उनका नाम मोइनुद्दीन हसन था और वो ईरान के सिजिस्तान, जिसको आजकल सीस्तान कहते हैं, वहाँ उनका 1141-42 ईस्वी में पैदाइश हुई थी. वो शेख उस्मान हरवानी के मुरीद बने. अच्छा, सूफियों में ये पीरी मुरीदी का सिलसिला होता है जहाँ के ऊपर जो इस रास्ते के ऊपर चलना चाहता है वो एक अपना पीर चुनता है, यानी कि स्पिरिचुअल मास्टर, और वो स्पिरिचुअल मास्टर उनको आगे लेके जाता है. अगर उनको लगता है कि इसके अंदर वो काबिलियत है और ये उस मकाम तक पहुंच चुका है तो जो पीर है वो अपने कुछ गिने चुने मुरीद या कभी सिर्फ एक ही मुरीद को अपना खलीफा यानी कि सक्सेसर बनाता है. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 52 साल के थे जब शेख उस्मान हरवानी ने उनको खिलाफत दी. खिलाफत मिलने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज हज करने के लिए मक्का गए और वहां से मदीना. वो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे थे जब उनको आवाज आई कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुखातिब हो रहे हैं और कह रहे हैं अजमेर जाओ. उनको नहीं पता था अजमेर कहाँ है, लेकिन जब बसारत हुई है और जाना है तो आदमी को मिल ही जाता है. बगदाद और हैरात के रास्ते होते हुए लाहौर पहुंचे, लाहौर से दिल्ली और फिर दिल्ली से अजमेर. वही जमाना था जब मोहम्मद अवगौर ने पृथ्वीराज चौहान को बैटल ऑफ तरेन में हरा कर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में सेटल हो गए, जो चौहानों की राजधानी थी, और वहां पर उन्होंने अपने उपदेश देने शुरू किए. उनको वहां लोग बहुत मानते थे और काफ़ी तादाद में उनको सुनने आने लगे और फिर उनके मुरीद भी बने. क्या राजा क्या रंक, सभी उनके अकीदतमंद थे और उनकी तरफ खींचने लगे. राजाओं की बात चली है तो बताते चले कि जो राजा यहाँ पे अपना माथा टेकने, अपना खराजी अकीदत पेश करने आए, उनमें से मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब थे. सूफी शहजादे दारा शिको तो पैदा ही अजमेर में हुए थे. सूफी शहजादी जहानारा दोनों यहाँ बहुत आते थे और शहजादी तो अपने निशान भी छोड़ गई हैं यहाँ पर. आज भी क्या कोई फिल्म स्टार हो, मेरे जैसा आम आदमी हो, किसी प्रदेश का मुख हो, हर कोई यहाँ आता है. उर्स पे जब चादर चढ़ती है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी चादर जाती है. 2015 में तो बराक ओबामा ने भी चादर भेजी थी। दूर दूर से यहाँ चादरें आती हैं और खराज अकीदत आता है, लोग मन्नत मानते हैं, मन्नत बढ़ाने आते हैं। प्रधानमंत्री की तरफ से भी हर साल चादर चढ़ाई जाती है उसमें। अपनी किताब द सूफी मार्टर्स ऑफ लव में कार्ल अर्नस्ट और ब्रूस लॉरेंस लिखते हैं कि ओरिजिनली ये दरगाह लकड़ी की थी, बाद में इसके ऊपर एक पत्थर की छतरी बनाई गई। जब मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने 1455 में अजमेर पर फतह पाई तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार के ऊपर एक कंक्रीट स्ट्रक्चर बनवाया और वो ये छतरी थी। दरगाह कॉम्प्लेक्स में तामीर होती ही रही। उसका सबसे पहला सबूत जो हमको मिलता है वो कपोला मिलता है, जो 1532 में आरास्ता किया गया और जिसके बारे में जो दरगाह की शुमाली दीवार है यानी कि नॉर्दर्न वॉल उसके ऊपर उसके बारे में सुनहरे अल्फाजों में एक कतबा लिखा हुआ है। यही खूबसूरत गुंबद हम आज देखते हैं। इंडो इस्लामिक फन तामीर को मद्देनजर रखते हुए एक कमल इस गुंबद की जीनत बना। बाद में रामपुर के नवाब हैदर अली खान साहब ने एक ताज पेश किया और ये ताज दूर दूर तक दिलों के शहंशाह की दरगाह के ऊपर दिखाई देता है। राजा रजवाड़े तो न रहे लेकिन दिलों के बादशाह आज भी दिलों पर राज करते हैं। दरगाह में ज्यादातर इजाफे अकबर के दौर में हुए और खुद शहंशाह ने करवाए। 1562 में अकबर शिकार पे निकले हुए थे जब उन्होंने कुछ वॉन्डरिंग मिस्ट्रल्स यानी कि जो चलते फिरते गाने वाले होते हैं उनको ख्वाजा गरीब नवाज की तारीफ में गाते हुए सुना। फिर क्या था, शहंशाह खींचे चले गए और अजमेर पहुंचे और वहां से उनकी एक सालाना ज्यारत शुरू हुई जो काफी साल तक चलती रही। 1568 में अकबर ने लंगर पकाने के लिए एक बहुत बड़ा पीतल का देग पेश किया और शायद दुनिया का सबसे बड़ा देग में से एक है वो। आज भी उसमें लंगर पकता है। जैसे आप दाखिल होते हैं आपके सीधे हाथ की तरफ देग रखी हुई है और अकीदतमंद लाके वहाँ के ऊपर चावल और गेहूं के बोरे चढ़ाते हैं और वहाँ पे एक किस्म का दलिया पॉरेज या खिचड़ी पकती है। 800 साल आना इसकी तारीख में आज तक वहाँ सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही पकता है। 1614 में जहांगीर ने भी एक देग पेश की और वो बाईं तरफ रखी हुई है। अकबर के देग से थोड़ी सी छोटी है लेकिन उसमें भी रोज खाना पकता है। अकबर ने 1569 में अजमेर में मस्जिदों और खानकाहों की तामीर का हुक्म दिया। लाल बलवा पत्थर की अकबरी मस्जिद शायद उसी हुक्म का नतीजा है। 1637 में शाहजहां ने भी एक यहाँ बहुत खूबसूरत मस्जिद बनवाई जो दरगाह के पश्चिम ओर की तरफ है। मैं दरगाह बाजार से होते हुए निजामी गेट से दाखिल हुई। निजामी गेट फूलों के डिजाइन से चमक रहा था, एक पीला फूल जैसे के दरगाह के बाजार में, और एक सुनहरा सा जो वो पीला गोल्डन येलो कलर होता है वो चिश्ती सिलसिले का रंग भी है। ये दरवाजा 1911 में ब्रिटिश इंजीनियर्स द्वारा हैदराबाद के निजाम के इशारे पे बनाया गया था। इसके बगल में नक्कारखाना या ड्रम हाउस है। यहीं से ख्वाजा की दहलीज पर आने वाले लोगों का इस्तकबाल होता है। पहले जमाने में तो यहाँ के ऊपर कलाकार बैठा करते थे जो नक्कारे बजाते थे। आज के दिन वो तो नहीं है लेकिन हाँ दरवाजा जरूर है। और इस दरवाजे के अंदर एक बेहद खूबसूरत शैंडेलियर यानी कि झूमर है जो गोल्डन टेंपल अमृतसर की द्वारा उनकी समिति के द्वारा पेश किया गया है। यहाँ से मैं आंगन से होकर अहाते नूरानी यानी कि क्वार्टर ऑफ लाइट में पहुंची। यहीं के ऊपर आस्थाना है। धूप और फूलों की महक से मेरा इस्तकबाल हुआ यानी कि होश जाते रहे। और यही तो है असली मोहब्बत खुदा की। क्या आप होश गंवा बैठे उनकी मोहब्बत में। मुख्य दरगाह के चारों तरफ एक रेलिंग है जो जहानारा बेगम सूफी शहजादी और शाहजहां की बेटी ने पेश की थी। जहानारा बेगम ने उसके एक दरवाजे के सामने एक चबूतरा भी बनवाया जो आज भी है और बेगमी दालान के नाम से मशहूर है। आस्ताने के दरवाजे में जाने के लिए बहुत भीड़ थी। हम सब अपने फूलों की टोकरी या चादर लेके एक लाइन में लगे रहे। एक बेचैनी सी थी, बेसब्री सी थी कि जल्दी से अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचते ही एक सुकून का एहसास हुआ। अच्छा, ये एक उन कुछ दरगाहों में से है जहां औरतों को अंदर आने की इजाजत है। ख्वाजा साहब को अकीदत पेश करने के बाद जो नजर उठाई तो ऊपर एक छपर खट है जो जहांगीर का चढ़ाया हुआ है और मोती और मदर ऑफ पर्ल्स का बना हुआ है और चार चांदी के डंडों के ऊपर खड़ा हुआ है। हाँ, वो चांदी के डंडे ज्यादा नहीं दिखाई देते क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालुओं के द्वारा पेश किए हुए फूलों और चादरों का अंबार जो है। जाइए वहां पर अपने हाजत पेश कीजिए, ख्वाजा साहब से दरख्वास्त कीजिए कि वो अल्लाह की बारगाह में, ऊपर वाले की बारगाह में आपकी हाजतों को पेश करें और मनवाएं। वसीला ही तो है, वो वलीउल्लाह है, अल्लाह के दोस्त हैं। आप उनसे कहिए कि वो आपकी हाजतों को फास्ट ट्रैक करवा दें अल्लाह की बारगाह में। हर किसी को वहाँ जाना नहीं नसीब होता, जब ख्वाजा को बुलावा आता है तभी जाते हैं। मैं दुआ करती हूँ कि आपका भी बुलावा आए, और जब आपका बुलावा आए तो याद रखिएगा मेरे लिए भी दुआ जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमें जरूर बताइएगा @htsmartcast पर ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए। अगर आपको इस पॉडकास्ट पर इतिहास से जुड़ी कोई और कहानी सुननी हो तो आप मुझ तक पहुंच सकते हैं ट्विटर के जरिए @IamRana, इंस्टाग्राम पे @RanaSafi। और ऐसे और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।
दिस वॉज एन HT Smartcast ओरिजिनल।
I'm Annie Apple, and I'm here to invite you to come and listen to my new podcast series, Raising a Pro. It's the most intimate sports-related conversations you will hear. Each week, we explore the journeys of some of your favorite NFL players through the eyes of those that know them best. From Joe Burrow, DeAndre Hopkins, Myles Garrett, Ezekiel Elliott, Nick and Joey Bosa, just to name a few. With exclusive insights and information, we leave no stone unturned. Subscribe now to Raising a Pro on your favorite podcast app.